This is the Epilogue Audio Experience.
Hello, listener. Thank you for tuning into the podcast where music inspires. This is the podcast where every week I interact with some of the most creative genius of our music industry to find out their creative discipline. In this podcast, artists share some inspiring notes from their life book, some lessons learned in their musical journey till date, and their way of dealing with challenges in life. You are listening to Nainaxum Soundcast on Epilogue Media, and I'm your host, Eva Bhatt. He is someone who started in the early days of YouTube, before there was any such word like YouTuber. And in a short span of time, he became the first Indian YouTube content creator to have more than 10 million subscribers. I feel his videos are not just about comedy or spoof, but are a social satire or have some message in the most hilarious and relatable way. And today we got this multi-talented artist on the podcast as he has just released his 7th single, Heer Ranjha, which he has composed, written and sung like always. अगर हम millions और billions की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंबानीज का नाम लिया जाए. लोगों के प्यार के हिसाब से अगर एक नाम है तो वो है भुवन बाम. भुवन, वेलकम ऑन द शो.
थैंक यू सो मच एवा. काफी महंगा इंट्रोडक्शन था ये और हमेशा मतलब इट फील्स गुड.
Thank you so much for connecting with us remotely from Delhi. So amazing. We are so happy. Congratulations for Heer Ranjha.
Thank you. Thank you. And thanks for having me.
It's a lovely video. It's a lovely video.
Ji.
Yeah, and we'll talk a lot about it. So, सबसे पहले हम बात करें तो भुवन, and you know your story is definitely so inspiring for all of us. So, बताएं कि you know आपकी शुरुआत किस तरह से हुई?
I think So if I talk about taking this up professionally, so it happened after I completed my school, and immediately school ke baad I started working in a restaurant, aur us restaurant mein I used to perform music. So trio hua karta tha hamara. Wow. Aur idhar apna agar Delhi mein aap अगर आपको दिल्ली का हिसाब किताब पता है तो दिल्ली में एक मॉल है सिटी वॉक, और वो सिटी वॉक के जस्ट बैक साइड पे देयर यूज्ड टू बी अ मुगलई रेस्टोरेंट कॉल्ड मोती महल. तो वहां पे आई यूज्ड टू परफॉर्म, एंड वहां मैंने डेढ़ दो साल आई हैव प्लेड. सो आई यूज्ड टू प्ले एवरी डे एक्सेप्ट ट्यूजडेज. आई यूज्ड टू प्ले एवरी डे रात के 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक. तो एवरी डे तो ये मैंने 1.5 साल किया, और ऐसे आई स्टार्टेड माय जर्नी. गजल्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, एंड देन फिर मुझे दिलचस्पी हुई कि आई शुड राइट माय ओन स्टफ. तब तक हम दूसरों के गाने गाते रहे.
जी जी.
तो बस दैट्स हाउ इट स्टार्टेड.
सो नथिंग रिलेटेड टू कॉमेडी और यू नो स्पूफ्स, नथिंग टिल देन. इट वाज ऑल अबाउट म्यूजिक.
और कॉमेडी हो गई, मतलब कॉमेडी. सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर सिंस चाइल्डहुड इट्स देयर. मतलब क्लास का जोकर था मैं. कुछ अगर किसी को कुछ एंटरटेन करना है, अगर टीचर्स की मिमिक्री करनी है, एंड टीचर्स वर आल्सो सपोर्टिव. वो दूसरी क्लासेस में मुझे बुलाती थी कि जाके भुवन को लेके आओ और उसको बोलो मेरी एक्टिंग करके दिखाएगा पूरी क्लास के सामने. तो दैट वॉज माई स्कूल लाइफ. कहीं म्यूजिक के लिए कोई इंटर क्लास कॉम्पिटिशन है तो म्यूजिक के लिए भेज दिया मुझे.
जी.
इंटर स्कूल कंपटीशन है तो म्यूजिक के लिए, क्योंकि एकेडमिकली तो चलता नहीं था मेरा हिसाब. तो पढ़ाई भी इतना ज्यादा कुछ था नहीं. तो टीचर्स ने बोला कि इसको अगर शौक है थिएटर प्ले ये सब करने का, तो लेट्स सेंड हिम टू एक्स्ट्रा करिकुलर स्टफ ताकि पता चले करता क्या.
तो अगर म्यूजिक की बात निकली ही है तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली स्टार्ट बाय any of your song that you would like to sing and start this podcast.
Okay.
Anything that you would like to.
Cool.
Ah.
आत्मा के रंग देख ही रहा मैं, कवि नीला है कवि लाल है कवि पीला है कवि नारंगी कवि सतरंगी कवि बैंगनी, बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें, देखो कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी मेरे आगे, तेरी मेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है, शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने जाने किस किस गली, तेरी मेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है।
So Bhuvan, you are a Maharashtrian, born in Baroda but brought up in Delhi. So do you have any memories of Baroda?
Zero memories.
So you were very young.
I was very young. मतलब एक साल का होऊंगा, दो साल का होऊंगा, तब मुझे दिल्ली ले आए ये लोग.
बिल्कुल. But आपको मराठी आती है?
हाँ, घर पे तो मराठी बात करते हम लोग.
वाह.
मदर टंग मराठी है तो आई के साथ मराठी बात हो गई. वो फिर स्विच हो जाता है, फिर फादर से फादर के साथ बात हो गई तो हिंदी हो रही है, फिर वापस स्विच हो गई मम्मी के साथ मराठी में.
बट वो ऑब्वियसली दिल्ली में रह के वो दिल्ली का इन्फ्लुएंस आना बहुत ही यू नो नेचुरल है.
हाँ, तो ये एक लाइक ये मेरा ट्रम्प कार्ड होता है जब मैं मुंबई जाता हूँ या महाराष्ट्र में कहीं जाता हूँ, तो क्योंकि एक्सेंट से, मेरे एक्सेंट से लगता है कि मैं फुल दिल्ली, मुझे कुछ
बिल्कुल
बात करनी आता है दिल्ली आता है, लेकिन जब मैं मराठी में बात करनी शुरू करता हूँ तो
याद रखना हम जरूर आपसे कुछ मराठी गाना सुनेंगे.
गाना मराठी गाना बिल्कुल आता ही नहीं है, ये मेरी मम्मी की भी कंप्लेंट है मेरे से.
सो लाइक यू नो आई फील भुवन यू आर द ट्रू देसी बॉय ऑफ द इंटरनेट बिकॉज यू नो योर आइडियाज योर लैंग्वेज योर ट्रीटमेंट एवरीथिंग यू नो द कॉन्सेप्ट्स आर समथिंग दैट यू नो मासेस कैन रिलेट विद एंड हेंस लाइक यू नो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड पीपल जस्ट लव यू फॉर योर नेचुरल यू नो ऑर्गेनिक कॉमेडी और सेंस ऑफ ह्यूमर. सो टेल अस अबाउट दैट जर्नी, जब आपने शुरुआत की, जब ये थॉट आया आपके दिमाग में कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ, व्हाट वाज देयर इन योर हेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि किस तरह का कंटेंट चलेगा यू नो इंडिया में, अगर ओरिजिनल कंटेंट की बात करें तो व्हाट वर द थॉट्स इन योर हेड देन?
जब मैंने शुरू किया था ना तब देवर ओनली टू, एआईबी एंड टीवीएफ,
राइट.
तो वो लोग क्या करते थे, और उनका बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था और वो लोग करते थे इंग्लिश में, तो मेरे को ऐसा था कि यार कुछ दिल्ली वाला ह्यूमर अगर मैं करूँ तो क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, और शूट मैंने करना था अकेले खुद के साथ ही, और ये कभी नहीं सोचा था कि चलेगा तो ये करूंगा चलेगा तो वो करूंगा, ये था कि एक बार डालता हूँ देखता हूँ कि क्या पता कोई देख ले कोई देख ले. उस टाइम तो पता नहीं था यार इंटरनेट इतना क्रेज है, इंटरनेट इतना बड़ा हो जाएगा आने वाले, बट वो डाल दिया, वो चल देख लिया लोगों ने, फिर वो ज्यादा लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू देखते गए देखते गए देखते गए, फिर जाके 2016 में 2016 के फेब में मेरा वैलेंटाइन से रिलेटेड एक वीडियो आया था, दैट वेंट वायरल इन इंडिया, तो उसके बाद से आई डिडंट स्टॉप.
You know the entire thing, so that's just brilliant. But you know, ऐसा लगता है कि जब हम आपको acting करते देखते हैं, फिर वो आपके videos में हो या फिर you know serious acting हो, like in your short films, या फिर you know आपके music को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि एवरी रोल यू नो यू फिट इन सो वेल. जब एक्टिंग करते हैं तो आप एक एक्टर ही यू नो लगते हैं, जब आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि यू आर मेंट टू जस्ट सिंग. सो यू नो दैट इज लाइक रियली ब्यूटिफुल. बट दिस टिल्ट टुवर्ड्स आर्ट पहले से ही था, यू नो दैट वॉज समथिंग दैट यू नो यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग रिलेटेड विद म्यूजिक और एक्टिंग.
ऑलवेज ऑलवेज सी ना वो जो पीछे बैकग्राउंड में वॉलपेपर है वो यही है. It's an astronaut playing guitar. क्योंकि जब अपन मतलब बचपन में जब पूछते थे कि क्या करोगे, सब लोग ऑलमोस्ट यही बोलते थे एस्ट्रोनॉट बनूंगा. तो वो एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट क्योंकि मेरे को और मेरे फादर को, हम दोनों को स्पेस के बारे में बहुत रुचि है.
वाह, राइट.
तो वो मेरे को स्पेशली इधर मुनीर का ले जाते थे बुक शॉप्स, और वहां से बड़ी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया स्पेस इंसाइक्लोपीडिया लेके देते थे. तो आई हैव बीन ब्रॉट अप इन सच अ वे दैट वो गैलेक्सी में, वो स्पेस में थोड़ा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब फिर उसके बाद रियलाइज हुआ इसमें पढ़ाई बहुत लगती है, तो मैंने कहा छोड़ो तो मेरा इंटरेस्ट वहां छूट गया। लेकिन जब मैं फोर्थ क्लास में था तब आई ने मुझे एक म्यूजिक म्यूजिक स्कूल में डाल दिया था, कि ये सोच के कि जब तू स्कूल से पढ़ लिख के आएगा तो 4:30-5 बजे बस एक घंटे के लिए यहाँ क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखने जाना है। उस टाइम समझ नहीं आता था, उस टाइम लगता था ये सब क्या है, क्यों कर रहे हैं सब, बट बाद धीरे धीरे जब हारमोनियम बजाना शुरू किया तो अच्छा लगा, दूसरों को भी बजाते देखा तो लगा कि अरे यार ये तो मस्त है, तो वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर जैसे धीरे धीरे सेंस ऑफ ह्यूमर तो वही फादर से आया सब कुछ, तो वो सब हो गया, वो नेचुरली इंटरेस्ट बढ़ता गया।
तो यू नो यू हैव रिलीज्ड अ कपल ऑफ यू नो सिंगल्स इन द पास्ट एंड दे ऑल हैव बीन रिसीव्ड सो वेल, तो जरा उस जर्नी के बारे में भी बताएं, सम ऑफ योर पर्सनल फेवरेट सॉन्ग्स, किस तरह से यू नो आप कंपोज और लिखते हैं।
लिखना तो आई गेस विथ एज भी बहुत करता है मैटर। मैं अभी सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये तो पिछले वालों से कितना अलग है, किस टाइम पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या सोच के लिखा हुआ है, वो तो उसी टाइम पता चलता है।
राइट
बट पुराने गाने जो हैं आपके वो उस टाइम की इनोसेंस के हिसाब से कितने अच्छे लगते हैं, कि उस टाइम की इनोसेंस थी तो कितने अच्छे थे, उस टाइम क्या फ्रेम ऑफ माइंड से लिखा था, तो वो सुन के मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि पुराने गाने सुन के लगे ये क्या लिखा था, वो उसका भी अपना इनोसेंस है, वो भी उसकी भी अपनी बात है, क्योंकि तब लगता था कि आपने क्या लिखा, वाह क्या लिखा। बट विथ एज जब आप धीरे धीरे मैच्योर होते हो तो आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो, आपका सेंस ऑफ म्यूजिक भी थोड़ा इम्प्रूव हो, तो आई गेस हर गाना जो भी मेरा पुराना गाना है जैसा भी है, देयर ऑल माय बेबीज, वो मेरा ऐसा है अपना है वो, तो मैं कभी उसमें छांटता नहीं कि ये मेरा फेवरेट है, ये जो भी मैंने प्ले किया था वो मेरा पहला गाना था, तो वो हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा।
वाओ That's just amazing. तो चलिए अगर हम हमारे लिसनर्स को कुछ फिर से एंटरटेन कर सकते हैं, आपका कोई दूसरा पसंदीदा गाना,
अगर मैं अभी वाला गाऊं,
बिल्कुल
ही रांझा,
यस
कहते हैं जो बनने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा,
lovely listeners, I'm sure you guys must have already checked out the video. The video is also very cool. And kya baat hai, is lockdown mein bhi, like you know, you have managed to release this video. So tell me about that story. How much has the lockdown been?
Lockdown has been. Yaar ek baat batao. 21 jab pehla lockdown hua tha, tab hum soch rahe the 21 din bahut hote hain. कैसे होगा लॉकडाउन, कैसे हम जिएंगे इस लॉकडाउन में, अब 100 से ऊपर होने वाले दिन, 100 से ऊपर दिन होने वाले हैं और अभी भी सब ऐसा ही लग रहा है कि क्या यही नॉर्मल है। तो वो एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, वो इतना इफेक्ट कर चुका है। मैं ही नहीं बता रहा कि कर रहा है, वो कर चुका है बहुत ज्यादा। और वो झलक रहा है हमारे ना सोशल मीडिया पे, झलक रहा है वो, क्योंकि सब इतने लड़ाकू हो चुके हैं अब, सब इतने, इतनी बहसबाजी चल रही है ट्विटर पे, इतनी
जी
बहसबाजी चल रही है सोशल मीडिया पे, एवरीवन इज फाइटिंग विथ ईच अदर। ऐसा नहीं तो पहले नहीं होता था, बट अभी लॉकडाउन के बाद तो सबका ही दिमाग खराब हो चुका है।
डेस्परेट भी हो गए, एक फ्रस्ट्रेशन और
जो कि बहुत ही एविडेंटली हमें दिख रहा है सबको,
जी
विच लॉकडाउन ने बहुत इफेक्ट किया। क्रिएटिव प्रोसेस भी काफी हैम्पर हुआ है, काफी हैम्पर हुआ है। और मैं भी यही, मेरा भी यही था कि यार इतनी इतनी टॉक्सिसिटी के बीच में अगर मैं कुछ प्यार दे दूं, कहीं एक प्यार भरा कुछ गीत, तो आई गेस शायद शायद थोड़ा माहौल सही हो जाए। और
या
तो बड़ा मजा, अच्छा लगा मुझे कि ऐसे टाइम पे हीरान जाया।
बिल्कुल, और ऐसे टाइम में जब ही रांझा जैसा गाना आता है तब हम रियलाइज करते हैं कि यू नो वी माइट हैव इग्नोर्ड द रोमांटिक साइड ऑफ लाइफ और इमोशंस सच एज लव इन दीज स्ट्रेसफुल टाइम्स.
हाँ, तो जितने लोग ये सुन रहे हैं, जितने लोग ये देख रहे हैं, या जितने लोग ये कहीं चल रहा है, जिन लोगों के आसपास ये, आप प्लीज जाके हीर रांझा देखिए म्यूजिक वीडियो। यूट्यूब पे लिख दीजिए हीर रांझा तो आपको मिल जाएगा। सुनिए, काफी मेहनत से, मेहनत तो सभी करते हैं, बट मैं कहूंगा
जी
काफी दिल से मैंने ये गाना लिखा है लॉकडाउन में, और पूरा लॉकडाउन प्रोडक्ट है। सारी सारी जितनी भी बातें हुई हैं, जितना भी एनिमेशन का काम हुआ है, सब कुछ वाया वीडियो कॉल हुआ है, और टोटल लॉकडाउन प्रोडक्ट है। और अगर आप सुनेंगे बारिश में सुनेंगे, क्योंकि मैंने सुना है मुंबई में बड़ा तगड़ा मौसम चल रहा है आजकल,
जी
आप ये बारिश में सुनेंगे, हाथ में चाय हो, कॉफी हो, ब्लैक कॉफी
क्या
हो, काढ़ा
बात है.
हो, खरोड़े का सूप हो, कुछ भी हो, आप ये अगर वो सुनते हुए, वो अगर पीते हुए अगर आप देखेंगे या सुनेंगे म्यूजिक वीडियो या ऑडियो, तो आई थिंक आपको मजा आ जाएगा, सच्ची मजा आ जाएगा। और अगर इसको रात के 9 बजे के बाद सुनेंगे तो और भी मजा आएगा।
Also, Bhuvan, what made your content different from others was that it was simple, massy, humorous for sure, but with a message. So, was this like a conscious thought?
आई गेस बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था ये, क्योंकि देर इज अ, जैसे आज के टाइम में देर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट शुड बी देयर विथ एवरी क्रिएटर,
आई एग्री.
कि अगर आपको, अगर आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर भी है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आवाज या आपके कुछ शब्द उन 1 लाख लोगों के लिए कहीं ना कहीं मायने रखते हैं।
बिल्कुल.
तो अगर आप बोलेंगे तो ही चेंज आएगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप मत ही बोलो, बिल्कुल चुप रहो, एकदम चुप रहो। बट बोलना बहुत जरूरी है। और मेरे को यह है कि कॉमेडी एक ऐसा थिंग है, कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि अगर कॉमेडी के साथ सोशल मैसेज दिया हो तो उसकी कुछ बात ही अलग है, वो अलग तरीके से, अलग तरीके से रिसीव होता है। वो प्रीची भी नहीं लगता। सबसे बड़ा डर तो ये
बिल्कुल
होता है कि वो प्रीची ना लगे बस। लेकिन अगर कॉमेडी में, कॉमेडी के थ्रू, किसी कैरेक्टर के थ्रू, फॉर एग्जांपल टीटू मामा के थ्रू कुछ बोल दिया,
या
तो वो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि मजे के मजे और एक मैसेज का मैसेज चला गया और लोगों को समझ भी आ गया, अच्छा ठीक है ये बोलना चाह रहा है। तो आई थिंक सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसका यूज आप कैसे करते हैं।
या
इन्फ्लुएंसिंग पावर उस बंदे के पास भी है जिसके 50,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं सारा खेल उसका है।
या एब्सोल्युटली राइट. एंड यू नो ऑल्सो बिकॉज योर ऑडियंस, योर टारगेट ऑडियंस, इनिशियली आपने शायद ऐसा सोचा भी हो कि यू नो जस्ट अडल्ट या यंगस्टर्स वुड लाइक यू नो लुक एट योर वीडियोज एंड एन्जॉय योर वीडियोज, बट द फैक्ट दैट किड्स किड्स लव यू एंड किड्स आर योर बिगेस्ट लार्जेस्ट टारगेट ऑडियंस. इफ आई डोंट नो बिकॉज आई हैव सीन माई यू नो यंग नीस एंड नेव्यू हु स्टे इन अ स्मॉल टाउन इन गुजरात, दे आर लाइक यू नो क्रेजी आफ्टर यू. सो दैट जस्ट शोज यू नो द रीच ऑफ योर कॉन्टेंट ऑल्सो.
हाँ जी, आप the age group is definitely very, very young. But you see, that's the beauty of it. Like, मैंने 5 साल पहले अगर शुरू किया था तो जो मेरी ऑडियंस है वो भी 5 साल छोटी थी तब. अब क्या हो रहा है, अब ब्यूटी है कि हम सारे ऑडियंस और क्रिएटर्स हम लोग साथ में मैच्योर हो रहे हैं. तो ये नहीं कि अचानक मैं वो 5 साल पुरानी ऑडियंस के लिए सोशल मैसेज दे रहा हूँ, मैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ जो मेरे साथ बड़े हुए हैं. तो वो एक इफेक्ट उनको ये भी पड़ता है कि अरे यार, ये तो ऐसा लग रहा है कोई दोस्त बता रहा है. तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है. और तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार, अगर तेरे पास ओपिनियन है, कोई ओपिनियन, मैं ये नहीं कहता सही ओपिनियन है गलत ओपिनियन है, लेकिन सबका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए. अगर आपका एक ओपिनियन है और आपके 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और अगर आपने कुछ ऐसे इश्यूज जो आप स्ट्रांगली फील करते हो, अगर आपने उसके बारे में बात नहीं की, तो कोई फायदा नहीं है इन सब्सक्राइबर्स का. टू मेक अ यूज ऑफ योर प्लेटफॉर्म. कॉमेडी म्यूजिक तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा हमेशा, बट एटलीस्ट टॉक अबाउट थिंग्स जो शायद सोसाइटी पे इम्पैक्ट लाए. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये करना चाहिए हर क्रिएटर को. अगर मैं कुछ बोलूंगा कि मैंने कुछ किया है तो वो गलत होगा. मैंने कुछ खास नहीं किया. मैंने इंटरव्यू लिया उन माइग्रेंट्स का, मैंने इंटरव्यू लिया उस कम्युनिटी का, उन लोगों का जो इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए.
बिल्कुल,
सबसे गलत असर पड़ा है. और मैंने उनका इंटरव्यू किया टी टू टॉक्स में. और वो करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बेटा, अगर तेरे घर में फ्रिज है, अगर तेरे सर पे
खाने को
है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर, घर के बाहर भी सब बढ़िया चल रहा है. तो आई थिंक उस एपिसोड का समरी सिर्फ यही था कि कैसे आप अपने से लेस प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ सद्भावना लाएं
जी,
कुछ एम्पैथी लाएं
जी,
और जो एक मिडिल क्लास आदमी के सबसे करीबी लोग होते हैं, दूध वाले भैया, सब्जी वाले भैया, अखबार वाले भैया, सिक्योरिटी गार्ड, जो हमें रोज सर्विस दे रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से, पिछले कितने सालों से, हम एटलीस्ट मॉनेटरी ना सही बट एटलीस्ट फोन करके उनकी खबर तो पूछ सकते हैं. क्योंकि अभी क्या, सब सोसाइटीज ने बैन कर दिया कि कोई आएगा
जी,
नहीं
जी.
तो सब लोग डरे हुए हैं ना, सब लोग डरे हुए, लेकिन वो भी तो डरे हुए हैं, वो कैसे अपना घर चलाएंगे. तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको फोन उठा के हफ्ते में एक बार फोन करके पूछ लो, कैसी हो दीदी, कैसे हो भैया, कैसा चल रहा है, कुछ चाहिए तो बताना. अगर आपने इतना बोल दिया ना, तो आधी जनता मेंटली कोरोना से जीत जाएगी. तो आई थिंक उस एपिसोड का ये था कि फोन उठाओ और एटलीस्ट उनसे पूछो कि वो कैसे हैं, मॉनेटरी हेल्प करो ना करो,
राइट.
तो आई थिंक वो एपिसोड का वो था. और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं घर आ गया ना वापस, मैं गाड़ी में गया, मैं एसी वाली गाड़ी में वापस आया.
बिल्कुल,
मैंने कुछ चेंज किया नहीं. मैंने बस उनकी बात जाके लोगों तक रखी, लोगों को समझाने की कोशिश करी. उस एपिसोड का जितना पैसा था वो मैंने वेरीफाइड जगह, उनमें से कुछ लोगों को आई डोनेटेड देम. बट क्या किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया.
Absolutely wonderful. Bhuvan, one more important thing that we would like you to talk about. The fact that aajkal ye, you know, YouTuber or influencer jaise fashionable terms aa gaye hain, but somewhere you see the youth getting blindly attracted to the quick name, quick money is a part of it. So what is your advice to them?
Main ek cheez seekh chuka hu ki fame milna bahut aasan hai aaj ke zamane mein. इन टाइम्स लाइक दीस फेम मिलना इज वेरी इजी. आपने क्या करना है पता है, मैं बताता हूं आपको फेम किस तरह के होते हैं. फेम क्या होता है कि फलाने को कोई जान ले, मतलब मेरे को कोई जान ले
जी,
मेरा नाम हो जाए, तो मैं सबसे अपनी कंट्री का सबसे प्रोमिनेंट फिगर पकड़ूंगा और उसको गालियां देता रहूंगा. गालियां भी पड़ेंगी लोगों की, लेकिन लोग मुझे जानेंगे, मेरे को फेम मिल गया. एक ये फेम होता है,
एक तरीका हो गया जी.
फेम हो गया, और ये फेम के लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेडी फॉर दिस. तो ये सीन आजकल बहुत वाइडली यही चलने लगा है आजकल, कि हम एक काम करते हैं, हम उस बारे में बात करते हैं कि यहां से गाली तो पड़ेगी पड़ेगी, लेट्स टॉक अबाउट दिस, फिर देखेंगे आगे, लेट्स स्टार्ट. फेम तो मिली जाए, फेम के बहुत सारे मायने होते हैं. जो नए लड़के हैं जिनको अगर कुछ ऐसा अचीव करना है, तो आपको पक्का पता होगा आपके पास कुछ तो ऐसा पावर होगा, कुछ तो ऐसा पावर होगा आपका. आप शायद म्यूजिक में अच्छे होंगे, आप शायद आपकी वोकैबुलरी, आपकी टॉकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपका या तो म्यूजिक अच्छा होगा, आपके कोई कुछ करिकुलर में अच्छे होंगे. तो आई थिंक यू नीड टू फाइंड दैट स्पेस टू अट्रैक्ट योर ऑडियंस, क्योंकि फेम तो मिल जाएगा आपको, फेम तो मिल जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन करना इज आर्ट. वो भी उसको मेंटेन करना भी आर्ट है. कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हो, जब आपको कोई बोलता है आई लव योर वर्क, हाउ डू यू हैंडल दैट प्रेज, वो आप प्रेज को कैसे हैंडल करते हो, आइदर यू कुड से थैंक यू, यू कुड से या या, ऐसे करके दो तरीके होते हैं हर चीज के. आप क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हो,
बिल्कुल.
तो ये क्या है, आजकल सबको लगता है कि फेम मिल जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी. बिल्कुल नहीं हो सकती लाइफ सेट. मेरे को आज भी घर वाले बोलते हैं बैंक के फॉर्म भर दे. घर वाले चाहते हैं, क्योंकि कल को आप सोचो, कल को YouTube की सीईओ ने हाथ खड़े कर दिए, चलो भैया अब तो हो गया, बैकअप करो, बहुत कंपनी चला लिया, बंद कर दो. क्यों, तो क्या होगा, जितने भी लोग YouTube पे सर्वाइव कर रहे हैं वो तो खत्म एकदम रातों रात. अनसर्टेनिटी बहुत है ऐसी फील्ड में. तो अगर अगर जो नया यूथ है वो अगर फेम का रास्ता छोड़ के ये सोचे कि कैसे सस्टेन करना है, कैसे अपने ऑडियंस को अपने पास खींच के लाना है इन अ पॉजिटिव वे, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स अ पॉजिटिव ऑडियंस, एवरीवन वांट्स कि यार मेरी ऑडियंस मेरे लिए ये करे. अगर मैं इनको बोलूं कि स्वाइप अप करके यहां जाए, तो वो स्वाइप अप करके वहां जाए. तो आई थिंक ये थोड़ा मेंटालिटी में आना जरूरी है कि इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट फेम दैट यू आर लुकिंग फॉर. हमें लगता है कि लोग पहचाने, ये करे वो करे, वो बहुत जरूरी है आई नो, बट किस लिए पहचाने वो भी बहुत जरूरी है.
Wow. Wow, really appreciate this honest feedback. And so one of my favorite songs of yours is Raha Guzar Bhuvan, because usme jo message tha, that was really heart touching. And tell me about that and memories of that song.
Yaar, us gaane ki memories, wo gaana pata hai kaisa gaana hai, main aapko batata hu, I'll be very frank with you. Wo gaana aisa gaana hai ki wo main apne live shows mein bhi nahi gaata, kyunki उस गाने के साथ काफी अजीब मेमोरीज है मेरी.
I'm sure.
वो गाना मैंने बनाया, वो गाना वही था, उसका पिक्चराइजेशन वही था कि एक लड़का अपने फादर को सॉरी बोल रहा है कि सॉरी व्हेनेवर यू नीडेड मी आई वाजंट देयर, लाइक यू've बीन अ पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड, आपने मुझे बड़ा किया है, सब कुछ किया है, बट जब आपको जरूरत थी ओल्ड एज में, तब मैं नहीं था, क्योंकि तब मैं 18 साल का था और मैं बड़ा रिबेल था ना. तब मुझे लगता था अरे यार चुप रहो यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना. वो सबका एक 18 साल के बच्चों का, 19 साल के बच्चों का ये थोड़ा रिबेल एज होता है, जब हम सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप से बड़े हो गए
जी.
तो वो गाना वो था, और मुझे नहीं पता था कि उस गाने के ठीक 2 महीने बाद मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा.
ओह माय गॉड,
मुझे आइडिया नहीं था. तो वो गाना बना दिया मैंने, वो गाना उसके बाद मैं कभी गाया नहीं, क्योंकि वो गाना मैं जब भी गाता हूँ ना, वो मेरे को मेरा फ्लिप हो जाता है कि ये क्या टाइमिंग था. मैंने वो गाना किया और 2 महीने बाद ब्रेन स्ट्रोक आ गया. दो ही इज प्रीटी मच अलाइव टुडे एंड इज लाइक ठीक है अभी, मतलब पहले जैसे नहीं रहे, बट सही है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है. He is recovering slowly, but I'm glad he is around and he's doing
Wow, many 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 prayers and love from all of us for him for sure. And let's just kind of cheer our spirits with maybe a song like Safar ya Sanghu Tere, if you can.
Thank you.
सारे शहर में जो तुम हो मेरे। सुनो क्या कह रही है ये सर धवाएं मेरे कानों में। जब आया है जो चाह रब से जो मांगा था कहती है झूठ लकीरें। किस्मत से पहले ना किस्मत से ज्यादा मिला है हर किसी को जिंदगी में। बातों ही बातों में तेरा यूं मुस्कुराना संग हूँ तेरे संग हूँ तेरे। तू मेरा आशियाना तू मेरा है ठिकाना संग हूँ तेरे संग हूँ तेरे। बातों ही बातों में तेरा यूं मुस्कुराना संग हूँ तेरे संग हूँ तेरे। तू मेरा आशियाना तू मेरा है ठिकाना संग तेरे संग तेरे।
Wow, it's just a pleasure listening to you. Thank you so much. I think we'll end this conversation, this beautiful conversation. But we forgot to ask about, did you expect to receive the Filmfare Award for your short film?
No, never.
That was right. So
It happened. And all thanks to the people, because wo mujhe public people choice mein mila award. So the people voted for it. And I'm glad कि मुझे उस स्टेज पे जाने का मौका मिला और बढ़िया है सूट पहनने का भी मौका मिला।
Thank you so much. Any message for the listeners if you would like to give, Bhuvan?
कुछ ऐसा कोई ऐसा मैसेज कुछ खास है नहीं, बट ये है कि अभी हो जाएगा जब होना होगा ठीक हो जाएगा तब, बट तब तक थोड़ा प्यार से लोगों से बात कीजिए आसपास वालों से। Right. सभी उसी कश्ती में सवार हो रखे हैं इस टाइम पे।
बट
सही है अगर सब आपस में प्यार से बात करेंगे तो शायद आसानी हो जाए जल्दी निकलने में। जेवढे पण लोक काही बघतायत मला एवढं मराठी छानपैकी येत नाही का की दिल्लीमध्ये माझं काय म्हणतात काय दिल्लीमध्ये माझं स्कूलिंग आणि कॉलेज झालंय, पण जेवढे पण लोक हे बघतायत सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि छान वाटतं मराठी बोलून।
फॅन्टॅस्टिक, वी थरली एन्जॉयड हॅव्हिंग यू ऑन द पॉडकास्ट टू भुवन।
गणपती बाप्पा मोरया आणि आय विश एव्हरीवन द बेस्ट विशेस अँड मे दिस इयर बिकम्स बेटर फॉर एव्हरीवन अँड लेट्स सेलिब्रेट गणपती लाईक नेव्हर बिफोर बाय नॉट गोइंग आउटसाईड बाय स्टेईंग इनडोर्स अँड कीपिंग एव्हरीवन अराउंड यू सेफ।
Brilliant. Thank you so much, Bhuvan, for such a lovely time. And thank you so much for coming on the podcast.
मुझे बहुत मजा आया और 9XM तो ऐसा है कि स्कूल के दिनों से मैं कर रहा हूँ फॉलो 9XM एंड सही है it's like a dream sort of a thing. और क्योंकि वैसे तो बकेट लिस्ट पे जो भी बकेट लिस्ट थी अभी तक की उस पे सब पे वो बकेट में पानी जा चुका है तो बट ये एक ऐसा 9XM तो थैंक यू
बाय
बाय
बाय। What a wonderful experience this episode has been. The funny, crazy Bhuvan Bam we see and enjoy on his YouTube channel and the one that we just met. Some ground reality shown by the original YouTuber. His personal opinion for all existing influencers being that to use one's fame and position to influence in the right way, to be conscious and responsible about your content, and for those who are meaning to begin a career as a digital content creator, he suggests to not get trapped in the shortcut ways, keeping it real and have a backup plan. And as far as his musical talent is concerned, it's out there on his YouTube channel for you guys to enjoy, Heer Ranjha being his latest offering. So guys, share with me your experience of listening to this podcast. Write to me at eva.bhatt@9xmedia.in. You can connect with me on Instagram @evabhattpodcast.
rate and review this podcast on Apple Podcasts. Subscribe to the podcast on Epilog Media, the website, so that you don't miss any episode. You can also enjoy the videos of our previous episodes on the official YouTube channel of 9XM and Spotlamp. Just search 9XM Soundcast on YouTube. I will talk to you guys next Wednesday with a fresh episode. This is me, Eva, signing off for now. You were listening to 9XM Soundcast on Epilog Media.